गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे ब्राह्मणों में कई ब्राह्मण इतने आचार विचारवान होते हैं कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण का नहीं खाते। अब तो परंपराएं सब शिथिल पड़ गईं, नहीं तो कहावत प्रसिद्ध थी, नौ कनबजिया 13 चूल्हे। महाराज जी कहते थे हमारे, नौ कनबजिया 13 चूल्हे। ऐसी भी बरातें ब्राह्मणों में होती थी कि बारात में गए और वहां सीधा मिल गया सबको, अपना अपना रसोई अलग अलग बना रहे हैं। क्यों? ब्राह्मणों की बारात ब्राह्मणों के यहां गई, नहीं खा सकते, कच्चा कैसे खाए। और जब भामर पड़ गई तो जो मुख्य जो रोटी बेटी का जिनसे ना था वो खाते, नहीं तो नहीं खाते। हमारे महाराज के पूज्य पिताजी पंडित लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज कहते थे कि जीवन बीत गया, गांव के ही जमींदार साहब थे अवस्थी जी, एक तरह से वो राजा ही थे, उनके पास हाथी घोड़े ऊंट बैल सब कुछ था, बड़े जमींदार थे, राजा जैसा ही उनका आदर था। महाराज कहते बचपन से उन्होंने पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की और उन्हीं के यहां सारा कार्यभार वो संभालते थे, पर पानी भी पीना होता तो घर आके पीते, कभी उनके यहां भोजन नहीं किया। और वो आग्रह भी करते, बोले हमारा आपका संबंध तो है और रोटी बेटी का संबंध नहीं। और बोले कई पीढ़ियों बाद अब कोई बोले कोई परिवार का संबंध उस परिवार से जुड़ा तो अब खाना पीना शुरू किया। कैसी मर्यादाएं रही हुई, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या नहीं जीता। पर गोस्वामी जी कहते हमारे तो राम जी ने ऐसी कृपा कर दी कि हमें अहंकार छोड़े ही नहीं। क्यों? बोले हमें खुद खबर नहीं है कि हमने किस किस के टुकड़े नहीं मांग के खाए। उस दीन दशा में किसके द्वार पर मांगने के लिए खड़े होना चाहिए और किसके द्वार पर मांगने के खड़े लिए खड़े नहीं होना चाहिए, ये भी विवेक नहीं था। इसलिए खाए टूक सबके, सबके टूक खाए, खाए टूक सबके विदित बात दुनी सो। कहते आप इस बात का प्रचार क्यों कर रहे हैं? बोले हम प्रचार क्या, सब दुनिया जानती है तुलसीदास जी की दशा क्या और दैन्य कैसा है गोस्वामी जी का। मानस बचन काय किए पाप सति भाय, राम को कहाय दगाबाज पुन, राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो। अब क्या हुआ? बोले हमने तो अपने मन से वाणी से क्रिया से हठ पूर्वक पाप किए, पर श्री गुरुदेव ने दो अक्षर प्रदान कर दिए, तुलसीदास अब तुम केवल राम नाम की शरण ले लो बस। राम नाम को प्रभाव, राम नाम को प्रभाव, पाओ महिमा प्रताप तुलसी सो जगमानी अत महामुनि सो। अति ही अभाग अनुरागत न राम पद मूढ़ ऐसो बड़ो आचरज देखी सुनी सो। राम कृष्ण हरि,
हे राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि,
राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ये राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय जय राम
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
देखो सच्ची बात तो ये है कि भगवान की विशेष कृपा से प्रतिकूलता आती है। पांडवों पर विपत्ति न आई होती तो वे श्री कृष्ण प्रेम का, श्री कृष्ण कृपा का, श्री कृष्ण की ममता का, हाँ महाराज श्री कृष्ण की ममता है पांडवों में, उसका आस्वादन करने का सौभाग्य पांडवों को नहीं मिलता। पांडवों की विपत्ति ही श्री कृष्ण कृपा रूपी संपत्ति के प्राप्त करने में हेतु बन गई। ऐसी विपत्ति न मिली होती तो ये कृपा रूपी संपत्ति मिलती है। और इस बात को भीष्म पितामह ने जाना। भीष्म पितामह कह रहे हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्प्रकोदरः, जहां धर्मराज युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा हो, महाबलशाली गदापाणि भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव जैसे समर्पित अनुज हो और श्री कृष्ण जैसे सहायक हो, ये भी बात कही। गांडीव चापम कृष्णोस्त्री ततो विपत्, इसके बाद भी विपत्ति, विपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे जहां श्री कृष्ण हो वहां विपत्ति का क्या काम, श्री कृष्ण सहायक हैं, धर्मराज जैसे धर्मनिष्ठ महापुरुष हैं, धर्मशील महापुरुष हैं, अर्जुन और भीमसेन जैसे भाई हैं, वीर हैं, गांडीवधारी गदाधारी भीमसेन, नकुल सहदेव जैसे भाई हैं और द्रौपदी जैसी परम पतिव्रता सती नारी है और श्री कृष्ण सहायक हैं, फिर विपत्ति। अरे एक एक हेतु ऐसा है जिससे विपत्ति की गुंजाइश नहीं घुसने की, फिर भी पांडवों तुम्हें विपत्ति भोगनी पड़ी, तुम विचार नहीं कर पा रहे हो, ये विपत्ति नहीं है, श्री कृष्ण अपनी कृपा रूपी संपत्ति का अधिकारी तुम्हें बनाना चाहते थे, इसलिए विपत्ति के ब्याज से उन्होंने अपनी कृपा करुणा का अधिकारी तुमको बनाया, पात्र तुमको बनाया। आज गोस्वामी जी की यह बाल ल्यावस्था की दीन दशा उनके ऊपर कृपा का हेतु बन गई। किसकी? हा हा वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव, शंकर जी पार्वती जी के सहित नंदीश्वर पर विराजमान होकर जा रहे थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अनाथ बालक तुलसी को रुदन करते हुए देखा। अभी तक इनका नाम क्या है? राम बोला। क्या नाम है? एक ही पंडित जी का रखा हुआ नाम नहीं है। जातस्य ही पुत्रस्य पिता दशमिन्नी नाम कुरयात, वो वाला नाम नहीं है ये कि ज्योतिषी ने विचार पूर्वक रखा हो, ऐसा नाम नहीं है। वो जन्मते ही ना हंसे ना रोए, राम नाम का तीन बार उच्चारण किया इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। कौन बालक? बोले जो राम बोला, जन्मते ही राम बोला, राम बोला, राम बोला, तो राम बोला नाम पड़ गया। कैसे विलक्षण महात्मा है, जन्मते ही राम बोला और जब जा रहे हैं तब लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। जाते समय भी राम और प्रकट होते समय भी राम, ये महात्मा हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो भगवान शंकर पार्वती जी के सहज जा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी रुदन कर रहे थे, दृष्टि पड़ी। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी ने कहा, भगवान यह बालक जो रुदन कर रहा है बहुत दुखी मालूम होता है, ये कौन है? भोले बाबा तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, अब पार्वती जी ने, माता जी ही तो ध्यान दिलाती है ना पहले, सबसे पहले ये वात्सल्यमयी है, पार्वती जी की कृपा पहले भई। देखा, अरे बोले ये बालक तो बड़ा भाग्यशाली है, हैं? सृष्टि इस कलिकाल के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए ही इस बालक का अवतरण हुआ है, और यह बालक भूख प्यास और दुर्दशा से ग्रसित होकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देगा तो इस जगत का महान अनर्थ हो जाएगा, इतना बड़ा घाटा हो जाएगा कि उसकी भरपाई फिर किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। तब हमारा परम कर्तव्य है इस बालक का पोषण करना। भैया यदि प्रेम से लोग भोजन करा देते तो भगवान उमा वल्लभ का कृपा प्रसाद इस बालक को प्राप्त नहीं होता, भगवती अन्नपूर्णा का कृपा प्रसाद इस बालक को प्राप्त नहीं होता। विपत्ति मिली तो भोले बाबा की कृपा करुणा रूपी संपत्ति भी मिल गई। अभी गोस्वामी जी भजन परायण नहीं है, पर इनको महान संत मानकर भगवान शंकर पार्वती जी को आज्ञा दे रहे हैं, भगवती अन्नपूर्णे अब तुम्हारे ऊपर भार है इस बालक के भरण पोषण का, तुम्हें स्वयं इसकी सेवा करनी है। ये शंकर जी ने आज्ञा दे दी स्वयं से। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है, प्रचेता पश्चिम समुद्र की ओर अपने पिता प्राचीन वर्ही की आज्ञा से, दक्ष की आज्ञा से, अपने पिता दक्ष की आज्ञा से प्रचेता पश्चिम समुद्र की ओर तपस्या करने गए तो एक सरोवर में उनको संगीत सुनाई पड़ा। अरे भैया सरोवर में से संगीत कहां से आ रहा है? वो खड़े हुए कौतूहलवश, तब तक भगवान शिव पार्षदों के सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस सरोवर के जल में विराज रहे थे और सिद्ध गंधर्व चारण उनका यशोगान कर रहे थे। प्रचेताओं ने उनको प्रणाम किया, बोले महाराज हम तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने की इच्छा से जा रहे हैं, हमने आपका मंत्र जप नहीं किया, आपकी उपासना नहीं की, आपके दर्शन की इच्छा भी नहीं की, फिर आपने अपना मंगलमय दर्शन कैसे दिया? भगवान शंकर ने अपने श्री मुख से कहा है, हे प्रचेताओ भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। क्या कहा? भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। हे प्रचेताओ मेरी भक्ति करने वाला मुझे उतना प्रिय नहीं है, पर मेरे आराध्य प्रभु की जो भक्ति करते हैं, जो भगवान वासुदेव के शरणागत भक्त हैं, वे तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो तुमने अभी उपासना नहीं की, भक्ति की नहीं, पर भक्ति करने वाले हो, बस इसी भाव से हम इतने रिझ गए कि तुमको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। और भगवान शंकर ने प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश किया और उस गीत का जप करने से प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हुआ। भागवत के चौथे स्कंध में ये चरित्र है। ऐसे ही आज भोले बाबा की जैसे प्रचेताओं पर कृपा भई थी, आज वैसे ही भोले बाबा की तुलसीदास जी पर कृपा हो गई। पर राम जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर कृपा नहीं थी, क्यों? बोले प्रत्यक्ष प्रकट होकर कृपा करेंगे तो उतना रस नहीं आएगा, और छद्म रूप में कृपा हो जाएगी और बाद में जब इसका अनुभव होगा, ज्ञान होगा कि अरे बाल्यावस्था में खीर खिलाने वाली कोई दूसरी नहीं, साक्षात भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा ही हमको खीर खिलाती थी, ये जब अनुभव होगा तो उस समय इनके हृदय में भगवान उमा महेश्वर के प्रति जो कृतज्ञता का भाव जगेगा और वह भाव जब काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होगा तो न जाने कितने जीवों को भगवान उमा महेश्वर के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाएगा, न जाने कितने जीवों का शैव वैष्णव विद्रोह तिरोहित हो जाएगा, हरिहरात्मक उपासना दृढ़ हो जाएगी। इसलिए महाराज कृपा तो कर रहे हैं भोले बाबा, भोले बाबा तो दूर नंदीश्वर खड़ा करके लीला देख रहे हैं और उसी समय भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई और आकर के बालक तुलसीदास को अपनी गोद में लेकर पुचकारा, अपने आंचल से आंसू पहुंचे, शरीर से धूल मिट्टी पहुंची, मुख चूमा, मस्तक सूंघा, धन्य है आज तक इस बालक ने इस प्रकार का लाड़ प्यार दुलार किसी का प्राप्त किया ही नहीं था, और बड़े प्रेम से खीर खिलाई। पूरे महाराज जी खीर तो वैसे भी बड़ी दिव्य होती है, हाँ बढ़िया अधोटा दूध की खीर होए, जैसे हम कहते हैं वैसी खीर बनाई जाए, वो फिर ठाकुर जी को भोग धराया जाए और फिर सीरी करके परोस दी जाए खीर, और फिर प्रेम से आग्रह पूर्वक जिमाया जाए, तो हाथ जोड़ के ये नहीं कहना पड़ेगा महाराज आशीर्वाद दो, फिर तो अपने आप रोम रोम से आशीर्वाद निकल पड़ेगा। ये तो हम लोग बढ़िया से खीर बनावे तब उसकी बात है, और साक्षात भगवान उमा वल्लभ उनकी आज्ञा से भगवती अन्नपूर्णा ने दिव्य पायस का निर्माण किया हो और फिर अपने हाथ से जिमाया हो, उसमें क्या स्वाद होगा उसके वर्णन की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। अब तो क्या कहना, अब तो महाराज उस बालक को अब एक ही, अब रोना गाना तो बंद हो गया, अब बालक के शरीर में एक विलक्षण अंग कांति प्रकट हो गई, सौंदर्य में निखार आ गया। अब तक तो हड्डी हड्डी हो रहे थे लेकिन अब तो बालक का स्वरूप ही बदल गया। संसार बड़ा विचित्र है, ऐसी दशा देख के तो दया आई नहीं, और जब बालक की चमक देखी तब चर्चाएं चलने लग गई। पहले तो कभी कभी गांव में कहता था दया करो इस अनाथ गरीब बालक पर, कुछ खाने को दे दो, लेकिन अब तो गांव के भीतर घुसता ही नहीं, बाहर किसी भी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता है, और इसकी तो चमक ही दूसरी हो गई, इसका स्वरूप ही दिव्य हो गया। एक प्रयोग है ना, पीनोयम देवदत्ता, पीनोयम देवदत्ता दीवाना भूमते, ये देवदत्त नामक व्यक्ति इतना मोटा है और दिन भर कुछ नहीं खाता, तब कोई भी बुद्धिमान यह अनुमान लगा लेता है कि दीवाना भूंगते ये तो ठीक है, रात्रि अवश्य में वो भूंगते, दिन में नहीं खाता पर रात को जरूर खूब ठूस ठूस के खा लेता होगा, बिना खाए इतना मोटा थोड़ी हो गया। तो ऐसे ही ये खाता पीता दिखाई नहीं पड़ता है, मांगता भी नहीं है, फिर भी इसका शरीर का लावण्य बढ़ गया है, अंग कांति बढ़ गई है, बहुत पुष्ट हो गया है बालक, अब रोता गाता भी नहीं है, जरूर कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसका पोषण कर रही है, ये चर्चा चल पड़ी। बहुत लोगों ने गुप्तचरी किया कि देखें कौन इसको भरण पोषण करता है, पर वे पता नहीं लगा सके। आखिर एक गुप्तचरी ने, गुप्तचरी ने, गुप्तचर ने नहीं, गुप्तचर तो थक गए, तब आखिर एक गुप्तचरी ने, इन माताओं में बड़ा भारी साहस होता है, क्यों ना हो ये शक्ति स्वरूपा है ना, इसलिए जो काम किसी से ना हो ये साक्षात शक्ति है, ये यदि निश्चय कर लें तो इनसे बड़ी गुप्तचरी और कोई दूसरा कर नहीं सकता। एक महिला ने बीड़ा उठाया, बोले मैं पता लगा कर रहूंगी, और तो महाराज पर काम यह है कि बस घर के काम धंधे से हमको मुक्त रखा जाए, मुक्त रही और बस इसी फिराक में रहने लगी, इसी विचार में कि ये पता लगाऊं इस बालक को खिलाता पिलाता कौन है। आखिर एक दिन उस गुप्तचरी ने पता लगा लिया कि कोई अत्यंत दिव्य स्वरूप वाली वृद्धा आती है, पहले से आती हुई दिखाई नहीं पड़ती, थोड़ी दूर आकर प्रकट हो जाती है, फिर चलकर आती है और ये बालक दौड़कर उसकी गोद में बैठ जाता है और वो प्रेम से जिमाती है, फिर 10-5 कदम चल के तुरोहित हो जाती है। ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये है तो कोई दिव्य शक्ति। एक दिन की उस गुप्तचरी ने पता लगा लिया। अब एक दिन की बात है, वो खीर खिला करके पार्वती जी जा रही थी, इसने दौड़ करके उसके पैर पकड़ लिए पार्वती जी के, इस गुप्तचरी ने चरण पकड़ लिए। अब तो तुम्हें परिचय देना ही पड़ेगा, तुम कौन हो, बहुत हट किया। पार्वती जी सहसा अंतर्धान हो गई, बोली नहीं पर सहसा अंतर्धान हो गई। हमें तो लगता भले ही वो गुप्तचरी का काम उसने किया, पर थी बड़ी भाग्यशालिनी, भगवती पार्वती के चरण पकड़ने का सौभाग्य तो उसे मिल ही गया। महाराज, भगवान के भक्त के जो अनुकूल पात्र होते हैं उन पर तो कृपा हो ही जाती है, वो उनके चरित्र में जो प्रतिकूल पात्र होते हैं उनको भी कृपा मिल जाती है। जैसे मीराबाई के चचेरे भाई जयमल, उनके प्रति शत्रुता के भाव से दिन रात चिंतन करने वाला शत्रु राजा, उसे ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया, प्रतिकूल चिंतन करने वाला। आज इसको, क्योंकि तुलसीदास जी का चिंतन कर रही थी इसलिए पार्वती जी का चरण स्पर्श प्राप्त हो गया। पार्वती जी तो अंतर्धान हो गई और उसने जाकर पूरे गांव में कह दिया, अरे महाराज बालक तो बड़ा दिव्य है, कोई दिव्य शक्ति आकर पोषण करती है। पता तो मैं नहीं लगा सकी कि वो कौन थी, पर देखा मैंने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष। उस दिन के बाद से पार्वती जी ने आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब भेद खुल गया। अभी तो एक ने पता लगाया, अब तो लोग इस बालक को ही घेरा डाल देंगे, तो भेद खुल गया, तो अब आने में बाधा होगी, इसलिए माता जी ने आना बंद कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, कहो देवी, आज बालक का पोषण करने, भोजन कराने नहीं जाओगी? बोले, भगवान ऐसी ऐसी घटना वहां घट चुकी है, अब तो आप ही कृपा कीजिए, आगे उस बालक का कुछ मंगल कल्याण हो। तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा इतने दिन का पोषण ही पर्याप्त है, अब हम आगे के पोषण की व्यवस्था करते हैं, जहां केवल शरीर का पोषण नहीं होगा, केवल अब ऐसे पोषण की व्यवस्था करते हैं जहां केवल देह का ही पोषण नहीं होगा, अपितु देह के साथ अंतःकरण का भी पोषण होगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य को पाकर के अंतःकरण भी पुष्ट होगा। और वो पोषण कहां होगा? वो पोषण होगा सद्गुरु देव के चरण कमलों में, जहां भैया दोनों खुराक मिलती है। स्वामी जी बड़ा लाभ है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, याद नहीं है हमको, बस इतना ही, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
गुरुदेव के चरणारविंदो की शरण जब तक न ली,
गुरुदेव के चरणारविंदो की शरण जब तक न ली,
गुरुदेव
गुरुदेव के चरणारविंदों की
कर कितने गए बेकार
दिन जिंदगी के किस तरह कितने गए बेकार
आते न वह
आते नीरा जो
आते नन
आते नै जो
गुरुदेव के आकार में
गुरुदेव के आकार में
रहता अंधेरा ही अंधेरा वो का संसार
रहता अंधेरा ही अंधेरा वो का संसार
जगत गुरु भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ऐसे त्रिभुवन गुरु भगवान शिव आज सदगुरु की प्राप्ति का संकल्प कर रहे हैं। अब बालक तुलसीदास को सदगुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए ये आवश्यक है, जिससे इसके शरीर का पोषण तो होगा ही अंतःकरण का भी पोषण होगा। स्वयं भगवान शिव चित्रकूट में भजन करने वाले श्रीमत स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज, जिनका नाम नरहरिदास जी भी प्रसिद्ध है और नरहरियानंदाचार्य जी भी नाम प्रसिद्ध है, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज और श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी महाराज। ये नरहरियानंद जी महाराज बड़े विलक्षण महात्मा है, इनकी गणना अनंतानंद जी के शिष्यों में भी है और इनकी गणना श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में भी है। आप लोग कहेंगे ये विचित्र बात, स्वामी जी के नाती चेला भी और चेला भी, ये कैसे हो गया? बोले ये नरहरियानंदाचार्य जी साक्षात श्री सनत कुमार जी के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? सनत कुमार, सनकादिकों के अवतार हैं नरहरियानंदाचार्य जी, सनकादिक भगवान का अवतार है। और ये जब पंचगंगा घाट काशी पर आए हैं और स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शरणापन्न हुए हैं, तो स्वामी जी की दिव्य दीक्षा तो शंख से ही हो जाती थी। स्वामी जी ने शंखनाद किया, शंखनाद करते ही बालक नरहरि की समाधि लग गई और स्वरूप बोध हो गया। श्री राम भक्ति प्रचारार्थ सनकादिक ही इस रूप में आए हैं, आत्मबोध हो गया, स्वरूप का अनुभव हो गया और श्री राम तारक की दीक्षा भी प्राप्त हो गई समर्थ गुरु के समर्थ शंखनाद से। अब दीक्षा तो दिव्य दीक्षा तो हो गई, अब विधिवत संस्कार करने की आज्ञा स्वामी जी ने अनंतानंदाचार्य जी को दे दी कि अब विधिवत संस्कार तुम कर दो, दीक्षा तो इसकी हो चुकी है पर एक मर्यादा है ऊर्ध पुनरादि धारण कराने की, अचला लंगोटी धारण कराने की, वो जो मर्यादा है पंच संस्कार प्रदान करने की, वो मर्यादा का पालन तुम कर दो। तो स्वामी जी से दिव्य दीक्षा हो गई इसलिए शिष्य हो गए और अनंतानंदाचार्य जी के द्वारा सारे संस्कार हुए इसलिए उनके भी शिष्य हो गए और अनंतानंदाचार्य जी स्वामी जी के शिष्य हैं इसलिए प्रशिष्य हो गए। ये चित्रकूट में भजन कर रहे हैं, चित्रकूट के अधिष्ठात्र देवता हैं श्री मदगंजन महादेव। मदगंजन जी का दर्शन किया चित्रकूट में जाके, रामघाट पर ऊंचे चढ़कर के जाते हैं मदगंजन जी का दर्शन करने के लिए। चित्रकूट महात्म्य में लिखा है चित्रकूट धाम की यात्रा करे और मदगंजन महादेव का दर्शन न करे तो चित्रकूट धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए चित्रकूट जाए तो मदगंजन महादेव का अवश्य दर्शन करे। और श्री वृंदावन जाए तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन जरूर करे। वृंदावन में जाए गोपीश्वर का दर्शन न करे तो वृंदावन की यात्रा अधूरी, और गोपीश्वर जी का दर्शन करने के लिए हमारे मोहल्ले में आना ही पड़ेगा। गोपीश्वर मंदिर के निकट ही हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, वहीं बंसी भट्ट है और वहीं ज्ञान गुदरी है, उद्धव गोपी संवाद है, हैं? वहीं सुधामा कुटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी की कृपा से क्या कह रहे थे, हाँ मदगंजन महादेव, ये मदगंजन महादेव चित्रकूट के अधिष्ठात्र देवता है। चित्रकूट वास करने के लिए मदगंजन जी की आज्ञा अनिवार्य होती है, इसलिए कभी कोई वहां अनुष्ठान करना हो पहले मदगंजन जी का पूजन करे, चित्रकूट वास की आज्ञा मांगे, तब चित्रकूट में निवास करे, फिर विक्षेप नहीं होगा। इस मर्यादा का पालन स्वयं भगवान श्री राम ने भी किया। जब राम जी चित्रकूट पधारे तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि यहाँ के देवता मदगंजन हैं, उनसे जाकर आज्ञा लेके आओ, महादेव जी से आज्ञा लेके आओ। कहाँ रहते हैं? बोले मंदाकिनी के अमुक तट पर, जगह बता दी राम जी ने, वहां वो रहते, उनसे आज्ञा मांग के आओ कि प्रभो हम आपके सान्निध्य में चित्रकूट धाम में कुछ दिन रहकर भजन साधन करना चाहते हैं, आप यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं, आप हमें यहाँ रहने की आज्ञा प्रदान करें। राम जी ने सिखा पढ़ा के लक्ष्मण जी को भेजा था, और जब वहां गए तो लक्ष्मण जी को कोई शिवलिंग का दर्शन थोड़ी, उनको तो साक्षात महादेव जी का दर्शन हुआ, और ये तो अनेक रूप रूप आए हैं। अवधूत उन्मत्त दिगंबर योगी के रूप में शंकर जी ने दर्शन दिया, वो सब भगवान शंकर के गण भी सब दिगंबर थे, वह नंगे थे, वो भी सब महात्माओं के वेश में थे, और भोले बाबा भी दिगंबर। लक्ष्मण जी ने कहा स्थल तो वही है। बोले मदगंजन स्थल यही? बोले हाँ यही है। एक शिलाखंड पर भोले बाबा बैठे थे, प्रणाम किया। अब शंकर जी का वेश बिल्कुल अवधूत जैसा था, कोई महादेव जी वाला वेश नहीं था, दिगंबर अवधूत, जटा फैले हुए हैं, रज लिपटी हुई है, नग्न है, दिगंबर हैं, इस रूप में शंकर जी वहां विराजमान थे, तो समझे कोई सिद्ध योगी हैं। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभो प्रभु श्री राम ने हमें भेजा है, आप यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं, हम यहाँ निवास की आज्ञा मांगना चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। इतना सुनते ही मदगंजन महादेव नृत्य करने लगे, वो नृत्य इसलिए कर रहे थे कि मेरे प्रभु आ गए हैं चित्रकूट धाम में, नित्य दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। शंकर जी नाचने लगे, पर विचित्र ढंग से नाचे। अब ये संतों की सभा है और हमें छिपाव दुराव आता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कथा साधु साई है मूल बात। भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे, उन्होंने नृत्य करते करते दाहिने हाथ से तो अपनी जिह्वा को पकड़ लिया और बाएं हाथ से अपनी इंद्रिय को पकड़ लिया, मूत्रेंद्रिय को पकड़ लिया, और फिर नाचने लगे। किसी के भी सामने ऐसा कोई करे तो उसको असभ्य माना जाएगा। लक्ष्मण जी लाल पीले हो गए, बोले रे राम राम, कैसे असभ्य के पास राम जी ने हमको भेज दिया? कुछ बोले तो नहीं? गुस्सा तो खूब आया कि हाँ हूं, कुछ नहीं किया, एक हाथ से जीव पकड़ लिया, एक हाथ से इंद्रिय पकड़ लिया, नाच रहा है। लक्ष्मण जी वहां से तुरंत लौट आए राम जी के पास, कुछ तमके हुए थे लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा, कहो लक्ष्मण जी, मदगंजन जी का दर्शन करके आए हो? अरे बोले महाराज, किस पागल के पास भेज दिया, बातचीत तो किया ही नहीं, एक हाथ से जीव पकड़ लिया, एक हाथ से इंद्रिय पकड़ लिया, नाचने लग गया। अरे बोले प्रणाम करो भूमि पर मस्तक रखकर उस दिशा की ओर जिस दिशा में वे महान योगी विराजमान हैं, वे कोई सामान्य पुरुष नहीं, वे भूत भावन भगवान शिव। तुमने चित्रकूट निवास की आज्ञा मांगी, चित्रकूट तपस्थली है और किसी भी भजन स्थली तपस्थली में रहने की मर्यादा यही है, वही साधक किसी पवित्र वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या आदि तपस्थलियों में रह करके भजन साधन कर सकता है जिसने अपनी जिह्वा को पकड़ लिया हो और अपनी इंद्रिय को पकड़ लिया हो। जिसने जिह्वा और इंद्रिय को नहीं साधा वो किसी धाम तीर्थ में चला जाए उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और महाराज इन दो इंद्रियों में भी यही मुख्य है। तावत जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियत्वमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, बोले तब तक जितेन्द्रीय पुरुष भी जितेन्द्रीय नहीं है जब तक उसने जिह्वा को नहीं जीता है, क्योंकि ताकत यहीं से सब जगह पहुंचती है, खुराक सब जगह यहीं से पहुंचती है। जिह्वा कैसे नियंत्रण में आवे? जिह्वा का नियंत्रण का तात्पर्य है पदार्थों को भोगने की लोलुपता का त्याग, पदार्थ का त्याग नहीं। अरे शरीर के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यक होगी, पर उनको खाने का भोगने का जो लौल्य है उसका त्याग, एक बात। दूसरी बात यह है जिह्वा को जीतने का तात्पर्य है कठोर वाणी का त्याग, जिसको गीता जी ने वांग्मय तप कहा है। वांग्मय तप का अनुष्ठान करना, हितकारी मधुर सत्य वचन का उच्चारण करना। वैसे महाराज जी बार बार हमारे मन में पता नहीं क्यों ये बात आती है कि ठीक से सत्य की महिमा समझ में आ जाए तो भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरा शब्द ही जीव जिह्वा से प्रकट नहीं होता। क्यों? संसार के जिन घटनाओं को, जिन दृश्यों को सत्य मानकर हम बार बार वर्णन करते हैं वे घटनाएं भी तो झूठी ही है, नाशवान जगत की घटनाएं हैं। भले ही वे सत्य हो तो उनको कहने सुनने से साधक क्या क्या हित सिद्ध होने वाला है। इसलिए सच्चिदानंद घन भगवान का जो नाम है उस नाम के उच्चारण से बड़ा कोई सत्य नहीं है। या तो भगवान के नाम का जिह्वा से उच्चारण करे, या रूप का, या लीला का, या भगवान के भक्तों के चरित्र का, इसी में जिह्वा की सार्थकता है। और बाकी तो टर टर करना ये ठीक नहीं है, मेढक जैसे टर टर करना ये ठीक नहीं। हरिशरण, पहले पाप मन में आता है, मन के बाद पाप वाणी में आता है, और जब पाप मन से वाणी में आ जाता है तो वह दिन दूर नहीं होता जब वह पाप क्रिया में भी आ जाता है। इसलिए मन में पाप न आवे इसके लिए भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान की लीलाओं का श्रवण। प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण शलिलस्य यथा शरत। जैसे शरत ऋतु के आने पर नदियों का, सरोवरों का मटमैला जल स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही कर्णरंध्र से भगवान श्री कृष्ण कथा के रूप से प्रवेश करके साधक के अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। तो बार बार लीला दर्शन और कथा श्रवण और नाम का जप, ये निरंतर होता रहे। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या तो जाता अनुराग, अनुराग प्रकट हो जाएगा। और जब अनुराग प्रकट हो जाएगा तो
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई,
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई,
अभयंतर मल अगहुं की जाई,
अभयंतर मल अगहुं जाई,
मिले न रघुपति बिनु अनुराग,
मिले न रघुपति दीनु अतुला
ये कोटि जप जोग विराधा
ये कोटि जप जोग
इसलिए भैया ये यही नियम ले ले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चितावत श्रवण करे कीर्तन करे स्मरण करे बस महाराज जी मन पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाएगी। तो आज सब गुरुदेव की कृपा हो गई। वे नरहरियानंद जी भजन करते हैं चित्रकूट में, भगवान मदगंजन महादेव प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के उन्होंने कहा नरहरिदास जी महाराज, नरहरियानंद जी महाराज, आप यहां से सीधे हरिपुर चले जाओ, वहां एक अनाथ बालक राम बोला है, बहुत संस्कारवान है, आपको ज्ञान कराने के लिए हम कह रहे हैं, वह सामान्य बालक नहीं है, साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही उस बालक के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, आगे चलकर श्री राम चरितमानस नामक ग्रंथ को भाषा में वह रचेगा जिससे असंख्य जीवों का कल्याण होगा, ऐसे बालक का पोषण आवश्यक है, उसको आप जैसे समर्थ सद्गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए यह अत्यंत अपेक्षित है, इसलिए मेरी आज्ञा है आप वहां जाकर उस बालक को शरण में ग्रहण करें, भगवत शरणागति प्रदान करें। गुरु खोजने नहीं जाना पड़ता। ठाकुर जी जब जीव को संस्कृति के चक्र से मुक्त करना चाहते हैं तो गुरु खोजते हुए चेला को आ जाते हैं, बोलो वृंदावन में आए, पता बता दिया है कहां रहते हैं। ये नरहरियानंद जी कौन है जानते हैं? इनका चरित्र नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, तुलसीदास जी के गुरु जी का चरित्र।
निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई, धर धर लकड़ी नाई शक्ति को सदन उदार, घर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उठा, शक्ति भक्त सो बोल जिन्हें प्रति पर ही दार, शक्ति भक्त सो बोल जिन्हें प्रति पर ही दार, लगी पड़ोसी होस भवानी भैंसो मारे, लगी पड़ोसी हंस भवानी भैंसो मारी, बदले की बेगार मूड बाके सिरदारे, बदले की बेगार मूड बाके सिरदारे, भरत प्रसंग जो काली का जो लड्डू देखी तन में तई, भरत प्रसंग जो काली का लड्डू देखी तन में तई, निपट नरहरियानंद के करदाता दुर्गा, निपट नरहरियानंद के
नरहरियानंद जी ऐसे समर्थ गुरु हैं कि भगवती दुर्गा ने भी इनसे राम तारक मंत्र की दीक्षा प्राप्त की।